सुनमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणान्तिके। हम लोग भारत में श्री धाम वृंदावन मथुरा से यहाँ पर आए हैं। विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है। वेद इसके सुप्राचीन अनादि ग्रंथ हैं। उपनिषद पुराण गीता भागवत रामायण इसके प्रधान भाग हैं। आजकल कुछ प्राय समस्त विश्व में ये जानने की उत्कंठा हुई है कि भारतीय संस्कृति क्या है और इससे क्या लाभ है। विशेष करके आज के युग में साइंस की बड़ी उन्नति हुई है। हम कुछ ही समय में पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर और सम विश्व को परिक्रमा भी कर सकते हैं बहुत कम समय में। आदमी बीमार हो जाने पर उसका दिमाग या हार्ट भी बदल सकते हैं। कुकिंग रूम से लेकर सर्वत्र ही बड़ी उन्नति हुई। आकाश में हम एक साथ में 400 300 400 आदमी जा सकते हैं। विशेष करके विश्व को हम मिनटों में ध्वंस कर सकते हैं। ये सब बहुत कुछ उन्नतियां हुई हैं किंतु साथ साथ में ये भी बात हुई है कि आज हम सबसे अधिक दुखी हैं। क्यों? पहले जो घर घर में प्रेम था, पति पत्नी में स्नेह था, बाप बेटे में जो प्रेम था, समाज के लोगों के प्रति जो हमारा उपकार और परस्पर प्रीति की भावना थी, धीरे 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 नष्ट होती जा रही है। आज स्त्री का विश्वास पति के प्रति नहीं, पति का पत्नी के प्रति नहीं, पिता का बेटे पर नहीं, बेटे का पिता पर नहीं। इस तरह से हम एक युग की समस्या ये हो गई है। हम सारा विश्व ब्रह्मांड के लोग मुट्ठी में आ गए हैं। बड़े बड़े शहरों में इतनी भीड़ है, विशेष करके इंडिया के कलकत्ते में, बॉम्बे में, मद्रास इत्यादि शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी चलने की जगह नहीं। यहाँ तो कुछ है भी, वहाँ कहीं एक इंच जमीन खाली नहीं। शहरों में बड़ी भीड़ होती है, बड़ी ठेस परस्पर रगड़ होती है, किंतु कोई एक आदमी गिर जाए तो उसको प्रति सहानुभूति नहीं। एक ही फ्लैट में एक जगह शादी हो रही है और एक उसी जगह में एक आदमी मर गया है, ये भी नहीं जानता जी कौन मर गया, किसकी शादी हो रही, सहानुभूति नहीं। इसलिए आज जगत से इतने साइंस की उन्नति होने पर भी अभी अमेरिका के किसी सुदूर प्रांत में क्रिकेट हो रहा है, आप देखेंगे जो कौन प्लेयर कैसे खेल रहा है, यहाँ से कैसे बॉल फेंक रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं घर में बैठे। किंतु घर में दो आदमी में प्रेम नहीं, ये प्रेम कहाँ चला गया? परस्पर जो विश्वास था ये विश्वास कहाँ चला गया? आज घर के मालिकों का अलग बैंक बैलेंस, पत्नी का अलग, पति का अलग, भाइयों का अलग, बेटे का अलग, बेटियों का अलग, क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, ये विश्वास कहाँ गया? आज के युग में यही युग की समस्या है। दूसरी बात क्या, आज साइंस इसको नहीं समझ सका कि इस शरीर के अंदर में क्या चीज है, वो प्राण आत्मा क्या चीज है। चंद्र पर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, बृहस्पति शुक्र में गए हैं कि नहीं? किंतु मैं कहता हूं चंद्र में जाने से लाभ क्या? यहीं पर वो साइंटिस्ट लोग ये देखें कि क्या चीज निकल जाने से आदमी का शरीर पड़ा रह जाता है, पहले ये देखें। चोरी डकैती इत्यादि के लिए बहुत से जेलखाने इत्यादि बनाए गए, गरीबों के लिए कुछ कुछ काम किए हैं लोगों ने, किंतु एक चोर डकैत बदमाश को सुधार दिया जाए, ऐसा कोई चीज निकला उसके चित्त वृत्ति को परिवर्तन कर दिया जाए? ये तो हुआ नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये उन्नति नहीं बल्कि आत्मा की जो भूख थी, आत्मा के जो गुण थे, वो सब समाप्त हो जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। हम अपने पुरखों के रास्ते से अलग हट रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। ऐसा कोई जगत में जन्म लिया अभी कोई है जो कल नहीं मर जाएगा, परसों नहीं मर जाएगा? है ऐसा कोई? साइंटिस्टों ने इसके लिए क्या किया? कोई ऐसा तरीका निकाला जो कि बूढ़े नहीं हम हो, किसी को कोई रोग ही नहीं हो? मैं तो देखता हूं कि जितने धनी मानी आदमी हैं, विशेष करके यहाँ के आदमी नीचे बैठ नहीं सकते, क्योंकि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, बड़े बड़े धनी घरों के यहाँ विशेष करके। तो साइंस ऐसा कोई चीज़ क्यों नहीं निकालता ये हमारे रोगों को रोक दे, हमारे केसों को पकने से उसको मना कर दे, आँखों की ज्योति और दांत का टूटना ये सब बंद कर दे? इसलिए रुपयों में, साइंस में और इस चीज में हमको सुख और शांति देने की ताकत नहीं है। अमेरिका के लोग, रशिया के लोग, जो विश्व के बड़े बड़े सभ्य देश कहलाते हैं, वहाँ के लोग दुखी क्यों, सुसाइड क्यों करते हैं? कभी विचार किया? ये सब विचार करना चाहिए क्यों? यही हमारी भारतीय संस्कृति इसका उत्तर देती है। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी लोग सुखी हों, कि पतंग, पेड़ पौधे, इनको भी कष्ट मत दो, सब में आत्मा है। इस जगत का कंट्रोल करने वाला कोई है? ऐसे ही नहीं है, एक एक फूल बनता है, इसका भी बनाने वाला कोई है, अपने नहीं हो गया। एक स्त्री को बेटे लड़के होते हैं, उसके स्तन में दूध कैसे आ जाता है? खाती तो चावल दाल रोटी ब्रेड और ये सब चीज खाती है, उसके अंदर में दूध कैसे आ गया? और जो ही बच्चा बड़ा हो गया उसका दूध सूख क्यों जाता है? बूढ़ी औरतों को दूध क्यों नहीं उतरता? समुद्र में ज्वारभाटा आता है, इसलिए साइंस क्यों नहीं विचार करता? कैसे आता है? इसलिए होल विश्व ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाला बनाने वाला कोई जरूर होगा, यदि उसकी हम प्रीतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। इसलिए बिना भगवत भजन के कोई सुखी रह सकता है ये गारंटी है कि वो सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। माता पिता के हम ऋणी हैं, क्यों? बचपन से अब तक हमारी पालन पोषण उसने किया, और जो विश्व ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने हमारे शरीर में मस्तिष्क दिया, जिन्होंने ऐसा सुंदर बॉडी हमारा बनाया, पृथ्वी को बनाया, इस पर जो कुछ चाहे वो भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर उस परमात्मा के लिए धन्यवाद क्यों नहीं दें? क्यों नहीं उसके लिए प्रार्थना करें? वो बहुत दयालु है। इस विषय में हमारा सनातन धर्म क्या क्या विचार है, थोड़ा सा इसके विषय में पहले हमारे हरि प्रिय ब्रह्मचारी जी दो शब्द बोलेंगे 10-15 मिनट, इसके बाद में मैं फिर इसके संबंध में आप लोगों को यथाकिंचित बतलाऊंगा। अभी ब्रह्मचारी जी ने कुछ सनातन धर्म के संबंध में बतलाने की चेष्टा की, मैं पुनः इसको और भी सरल तरीके से कुछ बतलाने की चेष्टा करूंगा। आप लोग व्यास का नाम जानते होंगे, कभी व्यास जी द्वापर युग के अंत में वेदों का विभाग किया, गायत्री का तात्पर्य बतलाया, महाभारत ग्रंथ की रचना की जिसमें गीता जैसे उज्ज्वल रत्न को प्रकाश किया जो आज विश्व में सर्वत्र गीता का पठन पाठन होता है। उन्होंने 18 पुराणों, 18 शाखा पुराण और 18 और उपशाखा पुराण बनाए। जितने धर्म के विषय हैं, जितने भी देवता देवियों की उपासना है, उन्होंने मनुष्यों के लिए बनाया, तो भी उनको प्रसन्नता आत्मा में नहीं थी। उनको ऐसे मालूम होता था कि मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई। एक समय बद्री नारायण के पास में सम्यप्राश आश्रम में सरस्वती के किनारे बैठे हुए, खिन्न मन से बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि हमारे अंदर में क्यों प्रसन्नता नहीं हो रही, कुछ कमी रह गई। उसी समय में नारद ऋषि आए, उनके गुरु। नारद ऋषि ने कहा, तुमने वेदों का विभाग किया, वेदांत सूत्र लिखे, उपनिषदों को भी प्रचार किया तुमने, यहाँ तक कि पुराणों को लिखा, गीता भागवत इत्यादि सब कुछ लिखे, किंतु तुमको आत्म प्रसन्नता नहीं हुई, तुमको कुछ खेद जैसा हो रहा है, क्यों, क्या बात है? तुम तो सभी कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा, जी गुरु जी, रोगी अपना रोग नहीं पकड़ पाता, वो तो गुरु जी ही अर्थात तो वैद्य ही पकड़ सकता है, तो मेरा रोग है आप ही समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ पाता कि क्यों नहीं मुझे आनंद हो रहा है जीवन में, मुझे सुखी क्यों नहीं, मैं सुखी क्यों नहीं। उन्होंने कहा, जी एक बात, तुमने पुराणों की रचना की, उसमें विविध प्रकार के देवताओं देवियों की उपासना की बात कही, तुमने सब प्रकार के धर्मों का विचार किया, उसमें लिखा, गीता में भी आत्मज्ञान की बातें तुमने दी, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, इस शरीर में बुढ़ापे से, जन्म से, मृत्यु से उस आत्मा का कोई भी विशेष संपर्क नहीं है, केवल हमने मान बैठा है कि ये मैं शरीर हूं और मैं शरीर के रोग मेरे हैं, और मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, जैसे मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, ये कपड़ा उठ रहा है, और हाथ को यदि छिपा दिया जाए तो मालूम होगा कि ये कपड़ा उठ रहा है, किंतु कपड़ा नहीं उठ रहा है, कौन उठ रहा है? हाथ। उस तरह से हाथ उठता है, किंतु क्यों उठता है? इसके अंदर में आत्मा है, इसलिए शरीर ही सर्वस्व नहीं है। संसार के अधिकांश लोग यही धर्म समझ रखा है कि ये शरीर संबंधित जो बातें, यही हमारा सनातन धर्म है। मैं शरीर हूं, इसको खाने पीने के लिए, इसको वस्त्र के लिए, ये सबकी जो जरूरत है वो मिटा दो। करोड़ों करोड़ों रुपए डॉलर हम एकत्र करते हैं, हम दवा के लिए कितना प्रयास करते हैं। आज बहुत उच्च कोटि के अस्पताल बने हुए हैं, आपके कलेजे को बदल सकते हैं, मस्तिष्क को बदल सकते हैं, किंतु मरना कभी रुका? मरना नहीं रुकेगा, बुढ़ापा भी नहीं रुकेगा, दुख भी नहीं मिटेगा। तरह तरह के मानसिक कष्ट हैं, ये सब शरीर संबंधी और मन संबंधी है। इसके अंदर में जो आत्मा है वो भगवान को भूल करके ये उसकी दुर्गति हुई है। इसलिए जीव इस ब्रह्मांड की जो सृष्टि करने वाले हैं, जो उसका पालन पोषण करने वाले हैं, जो उनका नियमन करने वाले हैं, और जिसमें अंत में ये विश्व सारा प्रवेश कर जाता है, वो गॉड है, GOD, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही मूल चीज है। जी मने जनरेटर, ओ मने ऑपरेटर, डी मने डिस्ट्रक्टर, सत्यव सम्मय इदम अग्र आसी, वही परम सत्य वस्तु है, वही एक जगत में था और उसी ने ये सब जगत का क्रिएशन किया, अभी सबका पालन पोषण करता है और वही सबका नियमन करता है। कर्म के अनुसार में उसका जन्म मरण दुख सुख सब व्यवस्थित वही करता है। शास्त्रों में ऐसे कितने सब प्रमाण भरे पाए हैं। जो लोग इस आत्मा को नहीं जान करके शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनको शास्त्रों में गधा कहा गया, जिनको पूंछ और दुम नहीं, एकदम स्पष्ट भाषा में कहा गया। केवल पशु ही नहीं, उनको गोखर चतुष्पदों में गधा कहा गया। क्यों? गधे को ऊपर नीचे इधर उधर का ज्ञान नहीं, केवल खाने से मतलब, और गधहियों की दुर्लभ्ति सहने का आदि है वो, इसके अतिरिक्त और उसके कुछ ज्ञान नहीं। सारा दिन परिश्रम करता है, दूसरों के भार को ढोता है, कपड़े धोता है, गंदे सब कुछ करता है, किंतु अपने लिए नहीं कुछ करता। उसी प्रकार से हम जिन्होंने ये शरीर को ही सर्वस्व मान लिया और शरीर के सुख के लिए सब कुछ किया, आत्मा को नहीं जाना, मैं कहाँ से इसमें आया, हमें कहाँ जाना है, हम कैसे सुखी रह सकते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं। कुछ लोग विचार तो करते हैं किंतु थोड़े समय के लिए विचार करते हैं, अधिक समय के लिए नहीं, इस जीवन भर के लिए। इसके बाद में जो नित्य जीवनों के लिए विचार कर सके, आपने ये सब कुछ नहीं किया, व्यास जी को नारद जी कह रहे हैं, आपने नहीं ये ठीक करके आपने नहीं लिखा, स्वयं भगवान ईश्वर जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं वो कौन है, स्पष्ट से नहीं कहा। कहीं आपने राम को भगवान कहा, कहीं विष्णु को कहा, कभी नारायण को कहा, कहीं दुर्गा को भी कह दिया, कभी गणेश जी को कहा, कहीं सूर्य को बतलाया, कहीं दुर्गा जी को भगवान कहा और उनकी उपासना की बात बतलाई, आपने स्पष्ट करके नहीं कुछ बोला। आप कुछ स्पष्ट करके बोलिए और उसकी कुछ कथाएं लिखिए। तो उन्होंने कैसे मैं लिखूं? तो ठीक है, तुम अनकंडीशनली सरेंडर करो भगवान के चरणों में, वो जैसा है वैसे ही तुम्हारे हृदय में रिवील करेगा, जैसा है वो अपने आप उतरेगा तुम्हारे हृदय में। बस ये कहो जो मैं तुम्हारा, बस ये शरणागत हो जाओ, मेरा ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं के बराबर, इसका कोई मूल्य नहीं, आप कृपा करें। बस ऐसा करते ही उन्होंने कृष्ण का स्वरूप देखा, बंसी बजाते हुए नवकिशोर नटवर मूर्ति देखी और देखा क्या, अपने सारे परिकरों के साथ में है, गोपियां नंद बाबा यशोदा इत्यादि सबके साथ, सारी ब्रज लीला को उन्होंने देखा। उन्होंने देखा उन्हीं कृष्ण से ही राम निसिंह कल्कि वामन इत्यादि अवतार समूह विष्णु नारायण सब उन्हीं से है। उन्हीं से उन्होंने देखा देव इत्यादि सब जितने हैं सब उन्हीं से निकल रहे, जीवात्माओं को उनसे देखा निकल। जो लोग उस भगवान की सेवा भूल जाते हैं वो संसार चक्र में पड़ जाते हैं, माया उनको ये शरीर और इसके अंदर में मन दे करके उसके आत्मा को आच्छादित कर देता, बांध देता है, भगवान को भूल जाता है, संसार को ही प्यार करने लगता है। और जो लोग भगवान को स्मरण करते हैं इसे ऊपर उठ करके जीवन मृत्यु से भी ऊपर उठ करके परम सुखी उनकी गति होती है। उन्होंने ये बतलाया जैसे चंद्र है, चंद्र में 15 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से जगत के कल्याण के लिए कभी कभी प्रभु जो लीला में इस जगत में उतरते हैं कभी कभी वो सब व्यापक होने के कारण वही विष्णु हैं, वही नारायण हैं। जब मर्यादा की रक्षा करनी होती है तो वही कृष्ण ही मर्यादा के रूप में राम के रूप में अवतरित होते हैं, लोग उनको राम के रूप में देखते हैं। अलग अलग ये राम कृष्ण नृसिंह विष्णु नारायण ये अलग नहीं है। जैसे पूर्णिमा का चांद और तृतीया का चांद ये अलग अलग दो चांद नहीं है, कभी तृतीया कभी चतुर्थी कभी पंचमी षष्ठी ये सब अलग अलग कलाएं दिखती हैं, किंतु एक ही चंद्र की ऊपर में छाया पड़ने के वजह से ये अलग अलग रूप में देखते हैं। ऐसे ही विष्णु नारायण कृष्ण राम सब एक तत्व हैं, अलग अलग नहीं हैं, इनको एक समझना चाहिए। तब जगत के कल्याण के लिए जितनी शक्ति जरूरत होती है उतनी ही शक्ति के प्रकाश करने के कारण उन भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसे राम सीता जी के साथ में आए, मर्यादा की स्थापना की, नृसिंह प्रहलाद महाराज की रक्षा की, इसी तरह से अलग अलग हम कुछ देखते हैं, किंतु तत्वतः एक ही चीज है। और शिव गणेश दुर्गा इत्यादि ये सब जीव तत्व भक्त ये देवता जगत की सृष्टि के लिए इसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने, उनको जीव ही हैं हमारे जैसे, किंतु कुछ उन्नत जीव हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं, भगवान के अंश हैं, किंतु भगवान के भूलने के कारण अभी मनुष्य हैं। हो सकता है यदि मनुष्योचित आप कर्म न करें, मांस मछली मदिरा पिएं और माता पिता का आदर न करें, गुरुजनों का आदर न करें और आत्मा क्या है इसको रियलाइज करने की चेष्टा न करें तो फिर गधे घोड़े इत्यादि का जन्म होगा, फिर ये सब जो सुविधाएं नहीं होंगी। भगवान ने अत्यंत अनुग्रह करके ये शरीर दिया है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और लाख चेष्टा करो जिस जन जरूरत होगी चुटकी बजाते ही एक सेकंड के अंतर्गत में ले लेगा, विश्व ब्रह्मांड के समस्त वैद्य मिल करके डॉक्टर मिल करके आपको एक सेकंड के लिए जीवन नहीं दे सकते, आपके बुढ़ापा को नहीं रोक सकते। ये सब का नियंत्रण करने वाला कोई और ही परमात्मा कृष्ण है, इसलिए कृष्ण ही भगवत्ता की चरम सीमा है, ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उसको किसी रूप में भी उसकी सेवा कर सकते हैं, विष्णु किसी का पुत्र के रूप में, विष्णु के रूप में किसी का पुत्र नहीं होगा, नारायण नहीं होंगे, किंतु कृष्ण किसी के पुत्र होंगे, किसी के सखा बन सकते हैं, उनका अवतार ही कुछ ऐसा है। राम रास नहीं कर सकते, वही कृष्ण ही है, इसलिए कृष्ण को जैसी उपासना करेंगे उसी रूप में उसका फल देते हैं। इसलिए आप इन सब चीजों को लिखिए कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इसलिए उन्होंने देख करके लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यही सनातन वस्तु है, अभी वो बतलाया बच्चे ने। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप जौ कुशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये सनातन उनका जन्म मरण नहीं है कृष्ण का। आप देखते हैं कि कृष्ण नंद बाबा के घर में या देवकी के घर में वसुदेव जी के घर में वो पैदा हुए नहीं, पैदा नहीं हुए। कैसे? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 16 वर्ष जैसे प्रकट हुए, राम के रूप में प्रकट हुए, ऐसा मालूम पड़ता है कि जन्म है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए भगवत्ता की चरम सीमा कुछ कृष्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं, बिना आकार के कोई वस्तु नहीं हो सकती है, तो ब्रह्म और भगवान होना तो बहुत दूर की बात है। विशेष करके हमारे कुछ भाई लोग वो कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, ये विष्णु जिनकी मूर्ति देखते हैं ये नित्य भगवान नहीं है, मूर्ति पूजा करने से भगवान की पूजा नहीं होती है। गलत है बोलो, क्योंकि रूप ही नहीं बना सकता है वो भगवान, अब ब्रह्म क्या होगा? ऐसी कोई संसार में चीज नहीं है जिसकी कोई रूप नहीं है। यदि उस पर ब्रह्म में, हमारे भगवान में या गॉड में यदि ये सृष्टि करने की ताकत नहीं है, हमको मनुष्य बनाया है, जब उनका ही रूप नहीं है तो दूसरे का रूप कैसे बना सकते हैं? जरूर उनमें रूप की पोटेंसी है, रूप है तभी वो बना सकते हैं। ऐसा कोई चीज है जो शून्य से पैदा हो जाए? शून्य से कोई चीज पैदा नहीं होगा। इसलिए जैसे आम है, आम से ही आम पैदा होगा, आम से चिड़िया पैदा नहीं हो जाएगी। जो चीज में जिस चीज की पोटेंसी है, इसलिए उस ब्रह्म में रूप की पोटेंसी है, वो निराकार नहीं है, किंतु हमसे दिखता नहीं है, इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में लिख दिया निराकार। क्यों? आंखें नहीं उनको देख सकती है, किंतु यथार्थ में आकार है। निराकार शब्द जो है निर्गुण शब्द है, और जितने भी इस तरह के शब्द हैं निशक्तिक हैं, उनमें रूप है। बिना रूप के और रूप शब्द नहीं बन सकता, बिना आकार के निराकार शब्द ही नहीं गठित हो सकता। इसलिए निराकार में भी आकार लगा हुआ है, ये मूल चीज है। इसलिए भगवान का रूप है। एक पानी देखिए, पानी को आप देखते हैं, पीते हैं, उसे स्नान करते हैं, पानी का रूप क्या है विज्ञान नहीं डिफाइन कर सकता। इसलिए वो कहता है क्या, वाटर इज शेपलेस, वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज कलरलेस। किंतु पानी को हम देखते हैं तो उसका जरूर रूप है। किसी भी चीज में रख दो वैसा आकार उसका हो जाएगा। कटोरी में रखिए, समुद्र में रखिए, नदियों में रखिए, किसी एक पात्र में रखिए, लोटे में रखिए, वैसा ही रूप हो जाएगा। इसलिए कौन से रूप उसको बतलाया जाए? पानी का अपना भी टेस्ट है, किंतु जहां की मिट्टी से वो पानी निकलता है, मिट्टी का गंध उसमें कुछ रहता है, टेस्ट लग जाता है, किंतु पानी का अपना कोई गंध है, किंतु वैज्ञानिक कैनॉट डिफाइन देम, उनको नहीं बतला सकता जो उसका टेस्ट क्या है। जहां की मिट्टी हो रहेगी वैसा ही उसमें टेस्ट हो जाता है। इसी तरह से भगवान में समस्त रूपों की पोटेंसी है, उसी से ये विचित्र जगत पैदा हुआ, नहीं तो कैसे हो सकता? जीरो से कुछ नहीं हो सकता है। देर मस्ट बी समथिंग, एंड दैट समथिंग इज होल थिंग, पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो ब्रह्म परिपूर्ण है, वो कभी शून्य नहीं होता, उसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, नित्य एक रस है, वही भगवत्ता की सीमा, ये साक्षात कृष्ण है। भगवान बहुत बहुत नहीं है। हम लोग समझते हैं कि ईसाई धर्म में एक गॉड है, मुसलमान धर्म में एक खुदा है, हमारे भारत में हिंदू धर्म में इतने देवता देवी और इतने भगवान हैं जिसकी कल्पना नहीं किया। एक क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि समस्त मनुष्यों की चित्तवृत्ति एक समान नहीं है। हमारे यहाँ क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैट्रिक BAM ISC IA BA MA PhD DLIT और तरह तरह की विद्या है। यदि केवल एक ही रख दिया जाए क्लास 1 तो क्या पढ़ेगा वो? यदि MA रख दिया जाए तो सभी MA में पढ़ जाएंगे, इसलिए क्लास रखा गया। लोगों के चित्तवृत्ति को धीरे 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 हम तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, उससे निर्गुण, धीरे 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 आत्म तत्व की ओर ले जाएंगे। इसलिए भगवत्ता का प्रकाश है। कहीं कमठ रूप देखिए, कहीं मीन रूप देखिए, मछली का रूप, कहीं सूकर का रूप, कहीं निसिंघर का रूप, कहीं वामन देव का, कहीं विष्णु का, कहीं नारायण का, कहीं राम का, कहीं कृष्ण देव का, ये सभी भगवान हैं। किंतु भगवान ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे बुद्धि के अनुरूप हम उनको समझ सकें, उनकी शिक्षाओं को, इसलिए अवतार लेकर के उतना ही शिक्षा देकर के चले जाते हैं। इसलिए वो अलग अलग नहीं हो जाएंगे, एक ही हैं। इसलिए हम एक ही उपास्य हमारे हैं, वह है भगवान कृष्ण। किस लिए कहा गया भगवान? भगवान जिसमें भग हैं, गुण हैं। क्या गुण? गुण समग्र ऐश्वर्य जिनमें है, जिनमें समस्त वीर्य, वीर्य मैंने बल है, रूप के अत्यंत आधार है, परम सुंदर रूप, ऐसा कोई रूप नहीं है जो कृष्ण के रूप को देख करके, राम को रूप को देख करके लुप्त न हो जाए। उनमें सब प्रकार के गुण हैं, उनमें ज्ञान और वैराग्य है जो मनुष्य में नहीं है। मनुष्य जन्मते ही कुछ जानना चाहता है, ये क्या है, ये क्या, करते 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 एमए पीए सब कुछ पढ़ लिया तो भी कुछ अभाव रहता है। जिसमें किसी ज्ञान का अभाव नहीं है, परिपूर्णतम ज्ञान है, जो ज्ञान के स्वयं भंडार हैं, वो ब्रह्म तत्व, भगवान तत्व है। इसलिए एक होकर के भी हमारे ज्ञान के तारतम्य से विविध रूप में प्रकाशित होते, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई मुसलमान कहेंगे हम जो कह रहे हैं ये कुरान कह रहा है, मानो उन्हें तो तलवार के घाट से उतार देंगे। किंतु हमारे भारतीय धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो प्रश्न करो, खुली छूट है, विचार करके इसको ग्रहण करो, किसी पर जबरदस्ती नहीं लादा गया। विचार करने से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। एक समय में महाराज जनक के दरबार में एक ऋषि आए, ऋषि ऐसे तैसे नहीं, सात अंगों से टेढ़े, उनका नाम भी अष्टवक्र, आठ जगह से टेढ़े, काले कलूठे, पैर में फटा हुआ बेवाय जिसको कहते हैं, दांत भी टेढ़े, चलनी भी टेढ़ी, स्वभाव भी कुछ टेढ़ा। महाराज जनक के दरबार में आए, महाराज जनक परम वैराग्यवान और ज्ञान के अगाध, ज्ञान के भंडार हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग उनसे ज्ञान लेने के लिए जाते थे। आत्म तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, उनको कैसे उपासना करके प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे जीवन में हम सुखी रह सकते हैं, इसके लिए जाते थे। अष्टावक्र जी वहाँ पहुँचे, सीधे राज दरबार में पहुँचे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग हैं, साथ साथ के साथ में सज धज करके बैठे हैं। जब वो आए, प्रवेश कर दिया, तो प्रहरी को उन्होंने जनक जी ने कह दिया, कोई भी साधु संत आए, ब्राह्मण आए, कोई ज्ञानी व्यक्ति आए, उसको सीधा हमारे यहाँ पर पहुँचाना, कोई रोक टोक मत करना। आजकल धनी पुरुषों के यहाँ जो धनी लोग हैं, दो दो डॉग रहेंगे, यदि कोई भूल से आ गया तो दोनों तरफ से आक्रमण करेंगे, कोई घुस नहीं सकता, और यदि घुस भी किसी तरह से जाए तो वहाँ पर दो पहरी है, आने नहीं देंगे सहज, जानते हैं कि ये लोग आएंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। उनके दरबार में ये सब मना नहीं था, घुस आए। जब वहाँ पर पहुँचे तो सारी सभा इनको देखा और देख करके देखा जी बड़ा निर्भीक है, कपड़े भी वैसे ही फटे पुराने, किसी प्रकार से लंगोटी बांध रखी है और आठों अंगों का टेढ़ा काला कलूठा, और ये कैसे आने का साहस किया? देख करके हो हंसने लगे, तो ये भी देख करके उनको और ये भी हंसने लगे। तो महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके पूछा, जी महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी ये लोग किस लिए हंस रहे हैं, आप किस लिए हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी आपको यहाँ पर निर्भीकता से आते हुए देख कर, जी ऐसा काला कलूठा अंगों का टेढ़ा, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, और यहाँ पर घुस आया कैसे? यहाँ पर कि ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, बड़े बड़े महाराज धीराज सब राजा महाराजा लोग सब हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए आपको आपकी निर्भीकता देख करके, निडरता देख करके, और इसमें घुस आए इसलिए, कपड़े भी तन पर नहीं है। तो उन्होंने कहा, जी मैं हंस नहीं रहा, मैं तो रो रहा, केवल हंसने का तरीका आप लोग देख रहे हैं। मैं बहुत दूर से आया, हिमालय के प्रांत से, देख रहे हैं जी मैं चल नहीं पाता, तो भी आया, इसलिए आया। मैंने सुना जी महाराज जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी गुणी और ब्रह्म तत्व को जानने वाले ऋषि महर्षि हैं, वहाँ जाने से हमारा कल्याण होगा, इसी नाते मैं बहुत कष्ट से यहाँ पर पहुँचा। तो फिर क्या हुआ? तो यहाँ आकर के देखा जी सब चमार बैठे हुए हैं, चमार जानते हैं ना, जो जूता सिलाई करते हैं, शुद्ध जाति के होते हैं, सब चमार बैठे हुए हैं। आपको डर नहीं लगा कहते हुए ये सब चमार बैठे हैं? हाँ, इसमें शंका की कोई बात नहीं है, मैंने इन सबको चमार जैसा देख रहा हूँ। क्यों? अरे जो चमड़े को विचार करता है कि ये चमड़ा काला है कि सफेद है, टेढ़ा है कि मेढ़ा है कि कटा हुआ, वो चमार के अतिरिक्त क्या हो सकता है? जो आत्मा का दर्शन करता है वो अलग होता है, वो ब्रह्म को जानने वाला होता है। इन लोगों ने हमारे चमड़े को देखा, काला कलूठा चमड़ा, टेढ़ा कटा फटा ऐसा देखा, हमारी आत्मा को नहीं देखा, इसलिए सभी चमार हैं। अब मैं तो बड़ी दुखी होकर के जा रहा हूँ, इन चमारों से हमें क्या लेना देना। महाराज जनक गए, उनके चरणों में गिर गए और गिर करके क्षमा मांगी और अपने सिंहासन पर लेकर के उनको बैठाया और उनकी पूजा की। फिर पीछे से ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य हुआ, देखो ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं जो कहने वाला है या कहलाने वाला है ये परमेश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तुलसीदास जी भी ऐसा कहा, जो सब जगह व्याप्त है इसलिए वो विष्णु है, वो सब जगह रमण करता है इसलिए उसका नाम राम है, उसी का अंश ये जीवात्मा है। हम सभी जीवात्मा हैं, किंतु जीवात्मा होने पर भी हम बद्ध जीव हैं, मुक्त जीव नहीं है। मुक्त जीव सर्वत्र भगवान की उपलब्धि करता है और वह जन्म मरण से अतीत होता है, उसको शरीर ये नहीं होता, ये शरीर जेलखाने में डाल करके हथकड़ी और बेड़ी के समान है, ये समझो। भगवान ने ममता दी है, ये शरीर दे करके ममता दी, उसे बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, सारा विश्व ये जेलखाना है किसके लिए, जो भगवान को भूल करके इस जगत में आए हैं। सभी सुख चाहते हैं क्योंकि उनकी स्वरूप तो धर्म तो आनंदमय है, किंतु इस जगत में इतना परिश्रम करके रुपया पैसा कमाते हैं, विवाह शादी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वकील कोई बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, किसी न किसी रूप से अर्थ इत्यादि पैदा करते हैं, किंतु सुखी हैं। हमारे भारतवर्ष में अभी कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल की लड़की, भारत की प्रधानमंत्री बनी दो दो बार, उनके दो लड़के, एक भी पीछे से प्रधानमंत्री बना, दूसरा प्रधानमंत्री बनने जा रहा था तो विमान से गिर करके मर गया, और इंदिरा गांधी को गोली से छलनी कर दिया गया और उनके लड़के को भी गोली से मारा, वो भी मर गए। लाखों करोड़ डॉलर्स उनके बैंक में जमा, इंडिया में भी, कहाँ स्विस के बैंकों में भी, स्विट्जरलैंड में और कहाँ कहाँ, और रुपया क्या काम दिया प्रधानमंत्री रह करके, उनको क्या दिया? जिसने जिसको रक्षा के लिए बनाया गया उसी ने मारा, इसका व्यवस्थापक कौन है? उसका कर्म। इसलिए याद रखिए, आप जो कुछ कमा रहे हैं, जिनके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, पसीने से खून को पसीना बना रहे हैं, सारा जीवन जो कुछ कमाया, अंत में उसमें से कितना भाग लेकर के जाएंगे ये बतलाइए, विचार कीजिए। एक सुई और धागा लेकर के जाएंगे इस जगत का, या ये केस, एक भी केस लेकर के जाएंगे? कोई भी चीज नहीं ले जा सकते। इसलिए इस जीवन में रहते हुए ही कुछ उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए, उस चेष्टा का नाम ही भक्ति है। यही हमारा सनातन धर्म है। अभी बच्चे ने बतलाया, जो परम पुरुष सनातन पुरुष भगवान कृष्ण हैं या राम हैं, मैं कृष्ण के लिए संबोधन कर रहा हूं, कृष्ण है, और हम जीव सनातन हैं। जब तक जीव भगवान को नहीं मिलेगा, लाख उपाय करो, कभी सुखी और शांति नहीं रह सकते हैं। पैसा ही यदि शांति और सुख देता तो अमेरिका सब ले लेता, आप लोगों के लिए एक पैसा नहीं छोड़ता, अमेरिका खर्च ले। और यदि कुछ बाकी रह जाता वो रसिया ले लेता। आज रसिया कहाँ है? कहाँ रसिया? बिखर गया ना। अमेरिका भी कितने दिन तक रहेगा? वो भी बिखरेगा। कितने दिन हुआ उसको बना हुआ? 150-200 वर्ष। इसके पहले फिर क्या होगा? इसलिए वैभव के द्वारा हम सुखी नहीं रह सकते। घर ही आपको सुख देता तो घर का छत गिर गया, आप मर गए, ये कैसे हो गया? विमान आपको सुख देता है, विमान में चढ़े, अभी सुना कहीं 340 आदमी वहीं से गिर करके विमान खत्म हो गए। करते हैं सुख के लिए, सारा विश्व सुख के लिए चेष्टा करता है। ऐसा कोई है जो दुख चाहता है? आप लोगों ने चाहा था कि हम बूढ़े हो जाएं? हमारे सामने ये भी बैठे हैं, कुछ और लोग भी जिनके हमारे जैसे केस पक गए हैं, दाढ़ी पक गई है, आंख से कमजोर, चश्मा, ये ग्लास लेना पड़ रहा है, किसी के दांत टूट गए होंगे तो सोने का दांत बनवा लिया होगा, चाहते हैं? फिर भी क्यों होता है? जरूर होगा भाई। जब तक कि भगवान को नहीं जानेंगे, उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक ये दुख रहेंगे। आपको बाई चांस 5 लड़की है, हम समझते हैं कि 20-25 लाख रुपया रखिए उनकी शादी के लिए, और यदि वो पथभ्रष्ट हो गए तब तक तो देखिए ये क्या होता है। कहीं आप पर बंदूक तो नहीं तान लिया या पिस्तौल? पिताजी रहते हुए लिख दीजिए सब कुछ हमको, समझते हैं जैसे इसी से सुख होगा, किंतु सुख इससे कदापि नहीं हो सकता है। जब तक कि आत्मज्ञान हो, आप अभी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? सब कुछ तो शरीर को सुखी बनाने के लिए, खाना पीना, मदिरा पान करना है, प्याज लहसुन मदिरा मांस मछली या जो कुछ भी खाते हैं शरीर के लिए, शरीर आपका पुष्ट होगा, किंतु वो भी कुछ दिनों तक के, इसके बाद में फिर बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़े को खूब खिलाइए तो क्या होगा? हजम ही नहीं कर सकेगा और रोग हो जाएगा। इसलिए आत्मा के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। दो चीज जोड़ने के लिए कोई चीज की जरूरत होती है, जैसे ईंट पर ईंट रखने के लिए मिट्टी का गिलावा हो, अथवा सीमेंट और बालू मिला करके उसमें लगाइए। इससे भी आजकल कितने चीज निकल रहे हैं जो दो ईंटों को खूब पक्के रूप में जोड़ देगा। भक्ति वह चीज है जो भगवान से जीव को जोड़ देती है सदा के लिए। भक्ति माने क्या? भक्ति माने वह वृत्ति जो भगवान से जीव को जोड़ने को जोड़ देती है, वही है प्रेम। जगत में सब कुछ देखा जाता है, सारे लोग सुख के लिए चेष्टा करते हैं किंतु इस भक्ति के लिए चेष्टा नहीं करते, इसलिए उनको सुख नहीं मिलता है। हमारा राष्ट्र संघ है, एक है, उसमें बड़े बड़े बुद्धि वाले प्रत्येक राष्ट्रों से चुन करके जाते हैं और देखते हैं कि कैसे सबको सुख हो, जो मर रहे हैं खुद ही, जो कि काम क्रोध इत्यादि से ऊपर नहीं उठ सके, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, वो क्या बतला सकते हैं ये कैसे सुखी। एक उदाहरण दो, हिरण्यकशिपु वज्र जैसा शरीर, 9 युवक 60,000 वर्ष तो उसने तपस्या की, जल में नहीं मरे, स्थल में नहीं मरे, आकाश में नहीं मरे, कहीं भी वो न मरे, मनुष्य नहीं मार सके, गंधर्व नहीं, बाघ भालू नहीं मार सके, दिन में मरेगा नहीं, रात में भी नहीं मरेगा, किसी महीने में भी नहीं मरेगा, घर के भीतर नहीं, घर के बाहर नहीं, ऐसा वर ले लिया ब्रह्मा जी। हुआ क्या, उसी के घर में प्रहलाद जन्मा और उसी की रक्षा कर लिए उन्होंने, एक सेकंड में नरसिंह का रूप धारण किया, एक सेकंड में, और धर करके क्या किया, न दिन में न रात में, शाम को, घर के बाहर नहीं, भीतर नहीं, दहली पर, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, नाखूनों से, आकाश में भी नहीं, पाताल में भी नहीं, दहली पर, घर के एकदम ठीक द्वार पर, महीने में नहीं, महीने का जो मल होता है, मल मास अथवा लीप ईयर, उस लीप ईयर में मारा। भगवान की बुद्धि दो अंगुल बड़ी होती है, इसलिए रावण का के राज्य में, लंका में सब सोने के घर थे। आपके यहाँ गया कहीं कहीं पर देखा जो मार्बल लगे हुए, इटली से मार्बल मंगाए गए हैं, कोई इंडिया से मार्बल लगाए हैं, तरह तरह के बड़े सुंदर घर हैं, चमकता है घर। हमको पैखाने के लिए बतलाया गया जैसे ये बाथरूम, हमने कहा कि ये बाथरूम है या कौन सा रूम है, मैं स्वर्ग में आ गया है? मैं तो विचार ही नहीं कर सका, इंडिया में हम लोग इतना नहीं देखते हैं, है बन रहे हैं, हम साधु लोगों को क्या प्रयोजन। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये पानी कहाँ से आएगा, तो इधर टिपा तो इधर नहीं आया, तो उधर मैंने बुलाया जो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई, ये पानी कहाँ से निकलेगा।